रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संघीय संसद का अधिवेशन 17 वैशाख दोपहर 2 बजे के लिए आह्वान। गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने दिया पद से इस्तीफा। स्वार्थ के टकराव से बचने के लिए नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस्तीफा देने का उनका कथन। कूटनीतिक पासपोर्ट के उपयोग को अधिक व्यवस्थित और मर्यादित बनाने के लिए कानून का सख्ती से पालन करने पर दलों का निष्कर्ष। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम को अनिश्चितकाल तक बढ़ाने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आह्वान किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल के संविधान के प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर आगामी वैशाख 17 गति गुरुवार को दोपहर 2 बजे संघीय संसद भवन सिंह दरबार में बैठक बुलाने का निर्णय किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा आज जारी एक विज्ञप्ति में दी गई है। गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सिफारिश पर गृह मंत्रालय का कार्यभार प्रधानमंत्री शाह को ही संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई है। इसी बीच गृहमंत्री गुरुंग ने बताया कि हाल के दिनों में शेयर खरीद सहित कुछ विषय पर उठे सवालों के कारण निष्पक्ष जांच के उद्देश्य से उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि पद पर रहते हुए किसी प्रकार का हितों का टकराव न हो, इसके लिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आज से लागू होने के हिसाब से अपना इस्तीफा दे दिया है। कूटनीतिक पासपोर्ट की सिफारिश और उपयोग को और अधिक व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाने के लिए मौजूदा कानून का कड़ाई से पालन करने पर सहमति बनी है। बुधवार को सिंहदरबार में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल की उपस्थिति में प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों के प्रमुख सचेतक और सचेतकों के बीच हुई बैठक में ये निष्कर्ष निकाला गया। बैठक के दौरान सभामुख अर्याल ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट से संबंधित किसी भी निर्णय को केवल कानून की सीमा के भीतर ही लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कूटनीतिक पासपोर्ट के उपयोग को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर संबंधित पक्षों और विशेषज्ञों से परामर्श कर कानून संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति की बैठक में सांसदों ने आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए वित्तीय सुशासन और बजट क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। सिंहदरबार में आज हुई बैठक में सांसदों ने बजट के माध्यम से विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में पारदर्शिता और स्रोत प्रबंधन को प्राथमिकता देने की बात कही। सांसदों ने 16वीं पंचवर्षीय योजना के साथ बजट आवंटन के समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रॉयल्टी का संघ प्रदेश और स्थानीय तह पर स्पष्ट बंटवारा सुनिश्चित करने तथा समग्र सरकारी राजस्व अनुगमन अनुमान को यथार्थपरक बनाने पर भी जोर दिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 77वें स्थापना दिवस को आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। विक्रम संवत 2006 वैशाख 9 गति पुष्पलाल श्रेष्ठ के नेतृत्व में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसी स्मृति में वर्तमान में विभिन्न समूहों और नामों में विभाजित कम्युनिस्ट दलों ने अलग अलग तरीके से स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर नेकपा एमाले के पार्टी के केंद्रीय कार्यालय च्यासल में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने चुनावी हार को स्वीकार करते हुए जनता के बीच जाकर अधिक मेहनत करने पर जोर दिया। इस अवसर पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पेरिस डाँडा स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन को लगा झटका अस्थायी है और इसका वस्तुनिष्ठ समीक्षा कर आगे बढ़ना चाहिए। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा है कि संविधान के क्रियान्वयन, विधि के शासन की स्थापना और सुशासन के मुद्दों पर सरकार को नेपाली कांग्रेस का निरंतर साथ और सहयोग मिलेगा। विराटनगर विमानस्थल में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाली कांग्रेस एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है और वो संविधान क्रियान्वयन, सुशासन कानून के पालन और जनजीवन से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि संघीय संसद में कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन सातों प्रदेशों में सरकार में भागीदारी और स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित होने के कारण पार्टी पर विशेष जिम्मेदारी है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय ने भ्रामक सूचना प्रसारित न करने का सभी से आग्रह किया है। हाल के समय में विभिन्न ऑनलाइन मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आधारहीन मिथ्या भ्रामक सामग्री का प्रकाशन और प्रसारण हो रहा है, जिस पर मंत्रालय ने गंभीर ध्यानाकर्षण व्यक्त किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भ्रामक सूचना प्रसारित करने की गतिविधियों को गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसे कार्य को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। यदि कोई आधारहीन या भ्रामक समाचार प्रकाशित या प्रसारित करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था की पहचान कर प्रचलित कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बागलुंग की जैमिनी नगरपालिका ने भूमिहीन आपदा से विस्थापित और आर्थिक अभाव के कारण घर बनाने में असमर्थ 36 परिवारों के लिए घर बनाकर उपलब्ध कराए हैं। सुकुम्बासी आपदा से विस्थापित तथा आर्थिक कारणों से घर बनाने में असमर्थ 41 परिवारों के लिए घर निर्माण योजना अंतर्गत अब तक 36 परिवारों को घर बनाकर हस्तांतरित किया गया है। ये जानकारी उप प्रमुख हरिहर शर्मा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम को और बढ़ा दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि नाकाबंदी अभी भी जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान की सरकार अंदरूनी तौर पर बटी हुई है। जैसी उम्मीद थी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मांग की है कि ईरान पर हमला तब तक रोके रखे जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि एक साझा प्रस्ताव लेकर नहीं आते। ट्रंप ने लिखा, इसलिए मैंने हमारी सेना को आदेश दिया है कि नाकाबंदी जारी रखी जाएगी और बाकी मामलों में पूरी तरह तैयार रहे। युद्ध विराम को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक उनका प्रस्ताव सामने नहीं आता और बातचीत पूरी नहीं होती, चाहे नतीजा कुछ भी हो। इसके बाद व्हाइट हाउस ने यह पुष्टि की है कि उपराष्ट्रपति जेसी वेस की पाकिस्तानी यात्रा रद्द कर दी गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंतिम इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संघीय संसद का अधिवेशन 17 वैशाख दोपहर 2 बजे के लिए आह्वान। गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने दिया पद से इस्तीफा। स्वार्थ के टकराव से बचने के लिए नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस्तीफा देने का उनका कथन। कूटनीतिक पासपोर्ट के उपयोग को अधिक व्यवस्थित और मर्यादित बनाने के लिए कानून का सख्ती से पालन करने पर दलों का निष्कर्ष। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम को अनिश्चित काल तक बढ़ाने की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।